ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश भर में मौजूद नेपाल बाल संगठन की संपत्ति का संरक्षण और उपयोग करने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। विभिन्न दात्री निकायों और देशों से प्राप्त होने वाले 5 अरब 13 करोड़ की अनुदान को स्वीकार करने का सरकार का निर्णय। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 संसदीय समिति से हुआ पारित और यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा केंद्रों पर किए हमले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल बाल संगठन की देश भर में मौजूद भौतिक संपत्ति का संरक्षण और उपयोग करने का निर्देश किया है। आज संगठन के पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सिंहदरबार में हुए विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ओली ने संगठन की जितनी भी जमीन भवन लगायत संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर कठोर कदम तक उठाने का निर्देश किया। उन्होंने संगठन के नए विधान की स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाने, संगठन की जिम्मेदारी में रहे बच्चों को संतुलित आहार, आवश्यक कपड़े और स्नेह ममता देने के साथ ही स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया। सरकार ने विभिन्न दात्री निकायों और देशों से प्राप्त होने वाली 5 अरब 13 करोड़ 43 लाख अनुदान राशि स्वीकार करने का निर्णय किया है। आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सहायता कार्यक्रम के तीसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए यूरोपियन यूनियन से प्राप्त होने वाली 23 मिलियन यूरो और यूनिसेफ से प्राप्त होने वाले 25 मिलियन यूरो यानी कुल 3 अरब 67 करोड़ 46 लाख रुपए बराबर अनुदान रकम स्वीकार करने का निर्णय हुआ है। इसी तरह सरकार ने जर्मनी सरकार से ऊर्जा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त होने वाली 10 मिलियन यूरो यानी करीब 1 अरब 46 करोड़ रुपए बराबर अनुदान राशि भी स्वीकार करने का निर्णय किया है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की आज की बैठक ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 को पारित किया है। समिति में निराकरण होने से बाकी दफाओं पर विचार विमर्श के बाद समिति में प्रतिवेदन पेश करने के लिए सांसद छविलाल विश्वकर्मा के संयोजकत्व में गठित उप समिति द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन पर विमर्श कर समिति ने आज उसे पारित किया। बता दें कि रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न हुए सार्वजनिक सेवा प्रसारण संबंधी विधेयक को प्रतिनिधि सभा ने दफावार विचार विमर्श के लिए समिति में भेजा था। विधेयक में चयन सिफारिश समिति के संयोजक के तौर पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को रखने के प्रस्ताव पर बहुमत से सहमति जुटाई गई है। समिति के सभापति अंबर बहादुर थापा ने बताया कि अब कानूनी भाषा संयोजित करके विधेयक का प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की सचिव राधिका अर्याल और कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के सहसचिव मान बहादुर अर्याल को किया गया है। बता दें कि समिति ने पारित इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा की 18 भाद्र को होने वाली बैठक में पेश किया जाएगा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दहाल ने कहा कि सरकार नई योजनाओं को बढ़ावा देने के बजाय पुरानी योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने वादा किया कि पुरानी योजनाओं के भुगतान की समस्या 1 माह के अंदर दूर हो जाएगी और आश्विन से पूर्वाधार निर्माण के कार्य में तेजी आएगी। आज बुटवल में प्रेस चौतारी नेपाल रूपंदेही द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री दाहाल ने कहा कि अगले 100 दिनों के भीतर सिद्ध बाबा सुरंग का ब्रेक थ्रू होने के हिसाब से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी से तय समय से कम समय में निर्माण पूरा करने का आग्रह किया गया है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का पद टीका लगाकर सौंपने वाली चीज नहीं है। आज नेपालगंज में प्रेस सेंटर बांके द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पार्टी एक सिस्टम बनाकर उत्तराधिकारी नेता बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अध्यक्ष बन के रहने की इच्छा नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया गया है और प्रदेश स्तरीय बैठक में हुए विमर्श के आधार पर पार्टी को एकजुट कर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने दो बड़ी पार्टियों एमाले और कांग्रेस पर उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने का आरोप लगाया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को सार्वजनिक छुट्टियों पर भी अस्पताल की बहिरंग सेवा को संचालित करने का निर्देश किया है। कार्यालय के सह सचिव हीरा मणि शर्मा ने कुछ दिन पहले मंत्रालय को पत्र लिखकर अस्पताल को सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में भी बहिरंग सेवा सहित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने को अनुरोध किया था। बता दें कि अधिकांश निकायों की ओर से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं न मिलने की बढ़ती शिकायतों के बाद सार्वजनिक छुट्टी के दिन भी सेवाएं देने को कहा गया है। मंत्रिपरिषद कार्यालय ने गृह मंत्रालय से सेवा वितरण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के समन्वय और निगरानी का भी अनुरोध किया है। चार दिनों से बंद करनाली हाईवे आज खोल दिया गया है। भारी बारिश के कारण भाद्र 12 गति से अवरुद्ध करनाली राजमार्ग आज दोपहर 2:30 बजे से खोल दिया गया है। बता दें कि गगनी नदी और दही नदी के भूस्खलन से मलबा हटाने के बाद सड़क खोल दी गई है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की सचिव राधिका आर्याल ने कहा कि महोत्सव की मौलिकता का निर्माण करते हुए इसे गरिमामय बनाया जाना चाहिए। आज तीज के अवसर पर रेडियो नेपाल और दीदी बहिनी समूह द्वारा आयोजित तनाव प्रबंधन संवाद कार्यक्रम में सचिव आर्याल ने कहा कि हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि हाल ही में तीज त्योहार महंगे और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति के अध्यक्ष समेत रही सचिव आर्याल ने कहा कि तीज पर्व को न केवल पारंपरिक रूप से बल्कि महिला सशक्तिकरण से जोड़कर भी मनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में रेडियो नेपाल के कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्री ने कहा कि तनाव प्रबंधन जैसे कार्यक्रम लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऐसे कार्यक्रम जारी रहने चाहिए। राष्ट्रीय व्यावसायिक सीप विकास प्रशिक्षण केंद्र के निर्देशक एवं योग ध्यान प्रशिक्षक विंदा आचार्य ने तनाव प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कराया था। कार्यक्रम में दीदी बहिनी समूह के अध्यक्ष प्रज्ञा शरद ने कहा कि वो रेडियो नेपाल की महिला बहनों के हक के लिए आवाज उठाएंगी। संसदीय सुनवाई समिति ने चीन, भारत, जर्मनी और डेनमार्क के लिए प्रस्तावित राजदूतों की संसदीय सुनवाई की है। समिति की आज हुई बैठक ने प्रस्तावित राजदूतों प्राध्यापक डॉ कृष्ण प्रसाद ओली, डॉ शंकर शर्मा और डॉ शैल रूपाखेती और सुमिनमा तुलाधर की संसदीय सुनवाई की है। बैठक में उन सभी ने अपने अनुभव, विचार और अवधारणाएं प्रस्तुत की और समिति को जिम्मेदारी के लिए प्रस्तावित देश और नेपाल के बीच सरकारी और नागरिक संबंधों, व्यापार, निवेश, सहयोग और यात्राओं के आदान प्रदान के बारे में वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। जननायक बीपी कोयराला स्मृति ट्रस्ट ने विक्रम संवत 2081 का बीपी कोयराला स्मृति साहित्य सम्मान पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार द्वारिका श्रेष्ठ काठमांडू को प्रदान करने का निर्णय किया है। इसी तरह 2081 का बीपी कोयराला स्मृति प्रजातंत्र सेनानी सम्मान पुरस्कार प्रजातंत्र स्थापना के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचाने वाले भोजराज भंडारी कास्की को प्रदान करने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी ट्रस्ट की कार्य समिति के महासचिव रामचंद्र पोखरेल ने दी। दोनों पुरस्कारों की राशियां क्रमशः 1,01,000 और 51,000 रूपये हैं। महासचिव पोखरेल ने बताया कि 111वीं बीपी जयंती के अवसर पर इस भाद्र 24 गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास काठमांडू में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों और राजधानी मॉस्को में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने सोशल मीडिया पर एक बयान देते हुए कहा कि मॉस्को की तरफ उड़ान भर रहे कम से कम 5 ड्रोन्स को नष्ट किया गया है। वहीं स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ब्रांस और बोरोनिश इलाके के ऊपर उड़ान भर रहे करीब 40 ड्रोन्स नष्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें काफी कम क्षति पहुंची है, केवल 2 फ्यूल स्टेशनों और 1 इमारत को ही नुकसान पहुंचा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मौजूद नेपाल बाल संगठन की संपत्ति का संरक्षण और उपयोग करने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। विभिन्न दात्री निकायों और देशों से प्राप्त होने वाले 5 अरब 13 करोड़ की अनुदान को स्वीकार करने का सरकार का निर्णय। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 संसदीय समिति से हुआ पारित और यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा केंद्रों पर किए हमले। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।